पूर्व पाठ के अंत में आपने ये पढ़ा था कि स्फोट जो है स्वयं में अक्रम है और नाद अर्थात ध्वनि जो है वह सक्रम है और ध्वनि जो क्रमवान है क्रमिक है उसी का जो है ना आरोप कर लिया जाता है और उसी के कारण से स्फोट शब्द को भी क्रमवान माना जाता है सक्रम माना जाता है। अब इसके आगे 49वीं कारिका में इन दोनों का जो स्वभाव है स्फोट का स्वभाव और नाद का स्वभाव इन दोनों के स्वभाव के बारे में बताते हैं। स्वभाव को ना धर्म भी कहा जाता है इसलिए 49वीं कारिका में कहा कि स्वधर्म स्फोट नादय हो माने स्फोट और नाद के बीच में वह धर्म होता है माने वह स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है तो कहते हैं कि प्रतिबिंबम यथान्यत्र स्थितम तो ये क्रियावशात तत्प्रवृत्ति मिवान्वेति स्वधर्म स्फोट नादय हो। प्रतिबिंब समझते हैं ना प्रतिबिंब का जैसे चंद्रमा आदि का जो प्रतिरूप होता है उसकी जो प्रतिछाया होती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं और तो ये कहते हैं जल को। तो ये पूर्णिमा की रात को देखेंगे तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो पानी पर जब पड़ता है तो उस और पानी में जो है ना हवा के कारण थोड़ी थोड़ी लहर होती रहती है तरंगें उठती रहती हैं तो उन तरंगों में जो वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसे अति चलायमान तो जल है लेकिन प्रतिबिंब जो चंद्रमा का है वह भी चलायमान प्रतीत होता है। वास्तविक में चंद्रमा तो चलायमान नहीं है प्रतिबिंब चलायमान नहीं है चलायमान है जल किंतु जल में उसका प्रतिबिंब आने के कारण जल जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे ही अनुभव में आता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब भी चल रहा है जबकि चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वह जल में स्थिर है। इसी तरह से जैसे वहाँ पर तो यह क्रिया वशात माने तो यह माने हुआ हो गया जल उसकी जो क्रिया माने कंपन आदि क्रिया तो जल की जो कंपन आदि क्रिया के बस में आकर जो प्रतिबिंबम यथा अन्यत्र स्थितम प्रतिबिंब जो है जैसे अन्यत्र जल आदि में स्थित हो करके तत्प्रवृत्तिम इव अन्वेति माने वो जो कंपादि क्रिया है उसकी तरह जो है ना अन्वेति माने युक्तो प्रतीतो भवति प्रतीत होता है उसी तरह से स्फोट और नाद का स्वभाव है। क्या कि स्फोट में नाद का स्वभाव जो है क्रमवान होना वह स्फोट में भी वह प्रतीत होता है ठीक उसी तरह से जैसे प्रतिबिंब में तो ये क्रिया के कारण चलायमानता प्रतीत होती है। तो जो नाद में गुण है जो नाद में धर्म है वही धर्म जो है वह स्फोट में भी प्रतीत होता है वस्तुतः वह स्फोट का धर्म नहीं है। अब आगे जो कारिका है 50वीं कारिका ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आत्मरूपम यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपंच दृश्यते अर्थ रूपम तथा शब्दे स्वरूपंच प्रकाशते। आप जो है ना थोड़ा गौर करिएगा कि कहते हैं कि मुझे ज्ञान हुआ तो किस चीज़ का ज्ञान हुआ तो घट का ज्ञान हुआ तो घट विषयक ज्ञान हुआ क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो किसी न किसी विषय का ही होता है बिना विषय समझते हैं कि नहीं ज्ञान का विषय कहते हैं कि जिसका ज्ञान हो उसे ज्ञान का विषय कहते हैं। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय हो गया घट किसी वस्तु का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय हो गया वस्तु। तो अब देखिए कि कहते हैं कि गौह इति शब्दः गौह इति अर्थः गौह इति ज्ञानम गौह को शब्द भी कहा जाता है व्यवहार में अर्थ को भी गौह कहा जाता है और ज्ञान को भी गौह कहा जाता है क्योंकि गौ विषयक ज्ञान होता है ना तो विषय और विषयी में विषय हो गया गौ और विषयी हो गया ज्ञान तो विषय और विषयी में अभेद मान करके ऐसा प्रयोग किया जाता है कि गोह इति ज्ञानम, तो गोह इति शब्द भी होता है, गोह इति अर्थ भी होता है और गोह इति ज्ञानम भी होता है। ये मैंने भूमिका के क्रम में बताया। अब कारिका पर देखते हैं कि आत्मरूपम यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपंच दृश्यते, माने ज्ञाने यथा आत्मरूपम दृश्यते ज्ञेय रूपंच दृश्यते। आत्मरूपम माने स्वरूपम, ज्ञान में जो है स्वरूप भी दिखाई देता है और ज्ञेय रूपंच दृश्यते और ज्ञेय रूप भी दिखाई देता है। ज्ञेय रूप मतलब विषय। अब जैसे घट का ज्ञान है तो घट के ज्ञान में विषय कौन है, ज्ञेय कौन है, घट, तो घट भी दिखाई देगा। दिखाई देगा मतलब समझ में आएगा है? और ज्ञान जो है वह भी समझ में आएगा। घट के ज्ञान होने से अब ये मन में संदेह नहीं होता है ना कि हम ज्ञानवान नवा, मैं ज्ञानवान हूँ या ज्ञानवान नहीं हूँ, ऐसा संदेह नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि घट ज्ञान होने से जैसे घट का ज्ञान होता है उसी तरह से उसके ज्ञान का भी ज्ञान होता है। तो वही कहा कि ज्ञान में आत्मरूप भी समझ में आता है और ज्ञेय रूप भी समझ में आता है। उसी तरह से अर्थ रूपम तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते, ताकि उसी तरह से जैसे ज्ञान में स्वरूप भी बोध, स्वरूप का भी बोध होता है और विषय का भी बोध होता है, उसी तरह से शब्द में भी शब्द के स्वरूप का भी बोध होता है और शब्द के अर्थ का भी बोध होता है। अब जैसे आप घटह किसी ने उच्चारण किया और आपने उस घटह को सुना, तो सुना तो घरा अर्थ भी ज्ञात हुआ आपको और घ अ ट अ ये जो वर्णानुपूर्वी है, ये जो क्रमिक वर्ण है, इसका भी ज्ञान हुआ। तो हुआ ना स्वरूप, शब्द सुन करके शब्द के स्वरूप का भी ज्ञान होता है और उस शब्द के अर्थ का भी ज्ञान होता है। मैंने बताया हुआ है कि शब्द का अर्थ कौन होता है, तो तादात्म्य संबंध जिस अर्थ के साथ होता है शब्द का, उस अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर ज्ञान से उदाहरण उपमा करके शब्द को बताया गया है कि ज्ञान का भी ज्ञान कराता है और विषय का भी ज्ञान कराता है, उसी तरह से शब्द शब्द का भी ज्ञान कराता है और अर्थ का भी ज्ञान कराता है। अब आगे 51वीं कारिका है कि अंध भावम विवापन्नो यः क्रतुः शब्द संज्ञकः वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागसो भजते क्रमम। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि नाद जो है वह क्रमवान होता है और स्फोट जो है वह क्रमवान नहीं होता है। ऐसा होने पर भी, क्रमवान नहीं होने पर भी स्फोट में क्रमवान की तरह प्रतीत होता है। क्यों होता है? तो वो आप जानते हैं कि नाद का जो गुण धर्म है क्रमवान वाला धर्म, वह धर्म ही जो है ना स्फोट में प्रतीत होता है। इसी बात को यहाँ पर जो है ना मयूर के अंडे को लेकर के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कहते हैं कि अंधभावम इव आपन्न, कि अंधभाव की तरह जो है ना यह आपन्न होता है, माने यह प्रतीत होता है। कौन? तो यह क्रतुः शब्द संज्ञक, यह शब्द संज्ञक क्रतुः सह अंधभावम इव आपन्न। यह जो शब्द संज्ञक जो क्रतु है, क्रतु का अर्थ कर लीजिए ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म जो है वह अंधभाव की तरह होता है। अब अंधभाव में क्या होता है तो थोड़ा गौर करिए। अंडा के अंदर क्या होता है? रस होता है। उस अंडे के अंदर में जो रस है, उस रस में होने के लिए तो सब कुछ है, हाथ है, पांव है, मुंह है, आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ रहता है। लेकिन उस रस को देखने से आपको उसमें कुछ दिखाई देगा? उसके अवयव आपको दिखाई देंगे? नहीं देंगे। लेकिन जब वही अंडा जब फूटता है तो उससे जो प्राणी निकलता है उसमें सारे अंग आपको दिख जाएंगे। तो जब तक अंडा में वो रस के रूप में रहता है तब तक वह अक्रम रहता है, और जब वह अंडा से बाहर आ जाता है तब वह सक्रम दिखाई देता है। इसी तरह से शब्द ब्रह्म भी है। जब अंतर रहता है, माने हृदय देश में जब तक रहता है, स्फोट के रूप में रहता है, तब तक तो वह अक्रम रहता है, और वही जब मुंह से बाहर आ जाता है तब वह सक्रम प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि अंदर दो तरह के शब्द हैं, आंतर शब्द और बाह्य शब्द। तो आंतर शब्द जो है वह स्फोट है और बाह्य शब्द जो है वह ध्वनि है, या आप उसको नाद कह लीजिए, नाद है, या फिर बैखरी बाक कह लीजिए। ये तीनों एक ही चीज़ हैं, बैखरी बाक, नाद और ध्वनि। तो यहाँ अंड भाव की तरह जो है ना बताया है कि शब्द ब्रह्म का भी भाव होता है। जैसे अंड भाव में आंतरिक स्थिति जो रहती है उसमें वो अवयव प्रतीत नहीं होते, लेकिन जब वह बाह्य में आता है तो अवयव प्रतीत होता है। उसी तरह से आंतरिक जो शब्द है स्फोट, उसमें कोई अवयव नहीं होते, किंतु जब वह मुख के द्वारा बाहर निकलता है तो उसमें अवयव की प्रतीति होती है। केवल एक अंतर है यहाँ पर दृष्टांत में कि अंडा जो होता है ना वह नित्य है, लेकिन ये जो शब्द ब्रह्म है यह अंडा जो होता है यह अनित्य है और शब्द ब्रह्म जो होता है वह नित्य है, लेकिन भाव एक ही है। जैसे अंडा में भाव होता है अवयव भाव और निरवयव भाव, उसी तरह से शब्द में भी अवयव भाव और निरवयव भाव होता है। अब इसी चीज को जो है ना, ये जो स्फोट और ध्वनि के बीच में होने वाला जो संबंध है, दोनों उसी बात को और भी दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। अब यहाँ मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है उसके को दृष्टांत में रख करके आपको समझाया जाता है 52वीं कारिका में। इसमें है कि यथा एक बुद्धि विषया मूर्ति ही आक्रियते पटे मूर्त्यम तरस्य तृतयम एवं शब्दे भी दृश्यते। पहले मैं कारिका का सामान्य अर्थ बता देता हूँ। कहा कि मूर्त्यंतरस्य, मूर्त्यंतरस्य माने पुरुषांतरस्य, किसी अन्य पुरुष का, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिवजी हो गए, देवदत्त यज्ञदत्त हो गए, कोई भी हुआ जो पुरुषांतर है माने अन्य पुरुष जो है उसको मूर्त्यंतर कहा गया। कि मूर्त्यंतर जो है माने जिसकी मूर्ति बनानी है, राम कृष्ण आदि की, वो मूर्त्यंतर हो गए। और उसकी मूर्ति को क्या करते हैं, उसके स्वरूप को क्या करते हैं, तो एक बुद्धि विषया, उनका जो स्वरूप है पांव से लेकर के और सर तक, उसको पूरे अंग प्रत्यंग को जो है क्या करते हैं, एक बुद्धि का विषय बना लेते हैं, माने पूरे शरीर को एक बना लेते हैं, मन में कर लेते हैं। और फिर ऐसा करने के बाद किसी कपड़े पर चित्र बनाते हैं या दीवार पर चित्र बनाते हैं या फिर मिट्टी उट्टी का जो है ना मूर्ति बनाते हैं। तो इसमें जैसे तृतयम भासते, जिस तरह से इसमें तीन चीज़ें जो है ना भाषित होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक तो मान लीजिए कि अगर कपड़ा पर मूर्ति बनाई जा रही है तो एक हो गया कपड़ा, दूसरा हो गया रंग, तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो हो गया वह हो गया पुरुष जिसका जो है ना मूर्ति, जिसकी मूर्ति बनाई जा रही है। तो मान लीजिए राम जी की मूर्ति बनाई जाएगी तो वहाँ तीन चीज़ें होंगी, एक तो राम जी होंगे, दूसरा वो कपड़ा होगा जिस पर मूर्ति बनाई जाएगी, और तीसरा जो है वो रंग कलर सब लेकर के जो बनाएंगे मूर्ति वो। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें होती हैं, एक तो जिसकी मूर्ति बनाई जानी है वो, जो मूर्ति बना रहे हैं वो, और जिस पर मूर्ति बना रहे हैं वो, ये तीन चीज़ें होती हैं। जैसे इस मूर्ति में बनाने में तीन चीज़ों का जो है तीन चीज़ों का अस्तित्व होता है, किसका किसका, एक तो जिसकी मूर्ति बनाई जानी है उसका, दूसरा जिस पर मूर्ति बनाई जानी है वस्त्र आदि पर उसका, और जो हम बनाते हैं मूर्ति उसका। इसी तरह से यहाँ जो है ना शब्द में भी ये तीन प्रकार का, तीन टाइप जो है इसमें भी प्रतीत होता है। अब ये तो कारिका में कह दिया कि यथा एक बुद्धि विषया मूर्ति आक्रियते पटे मूर्त्यंतरस्य तृतीयम एवं शब्दे विभासते। अब इसको थोड़ा जो है ना समझना है। ऐसा है कि अब मान लीजिए आपको मूर्ति बनाना है तो आप क्या करेंगे, जिसकी मूर्ति बनानी होगी ना उसको निहारेंगे, पहले पांव से लेकर के सर तक एक एक अंग को पहले ठीक से देखेंगे। तो ये हुआ सक्रम देखना। उसके बाद जब पूरा देख लिए तो पूरे फिर एक पूरी छवि को एक बार मन में जो है ना पूरे ऊपर से नीचे तक एक बार उसको जो है ना ध्यान में केंद्रित करेंगे, और उसके बाद फिर मूर्ति में उसको फिर क्रमिक बनाएंगे, हाथ पांव आँख कान नाक एक एक करके बनाएंगे। तो ये तीन चीज़ें अवस्थाएं होती हैं। इसी तरह से शब्द में भी देखिए कि जब तक अंतःकरण में रहता है शब्द तो वह क्रम शून्य रहता है, वह अक्रम रहता है, और जब मुंह से बाहर होता है तो वह सक्रम होता है। तो वक्ता और श्रोता दो होते हैं ना शब्द के बीच में, शब्द के प्रयोग के लिए दो चाहिए, एक वक्ता चाहिए एक श्रोता चाहिए। तो वक्ता की दृष्टि से आप देखिए तो वक्ता का जो आंतरिक शब्द है वह अक्रम है और मुंह से बाहर निकलने पर सक्रम है। श्रोता की दृष्टि से देखेंगे तो श्रोता जब सुनता है तो सक्रम सुनता है, और जब अर्थबोध कराता है उसको हृदय वाला स्फोट शब्द वह अक्रम होता है। तो इन दोनों में जो है ना ग्राह्य ग्राहक भाव होता है, नाद में और स्फोट में, इन दोनों में प्रकाश से प्रकाशक भाव होता है। और जैसे मूर्ति में आपने देखा कि पहले सक्रम फिर अक्रम और फिर सक्रम होता है, इसी तरह से वक्ता और श्रोता की दृष्टि से भी ये जो है ना शब्द सक्रम और अक्रम प्रतीत होते रहते हैं। आज का पाठ जो है ये 52वीं कारिका पर ही रखते हैं।